SBS Audio is supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
SBS हिंदी सेवा के सभी श्रोताओं को नई दिल्ली से मनन कुमार का नमस्कार। पेश हैं भारत के समाचार। अमेरिका के भूतपूर्व राष्ट्रपति और मौजूदा उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर हुए कातिलाना हमले की भारत ने पुरजोर निंदा की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया ऐप एक्स पर ट्वीट करते हुए लिखा, मेरे मित्र पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर हुए हमले से मैं बहुत चिंतित हूँ। इस घटना की कड़ी निंदा करता हूँ। राजनीति और लोकतंत्र में हिंसा का कोई स्थान नहीं है। उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूँ। हमारी संवेदनाएँ और प्रार्थनाएँ मृतकों के परिवार, घायलों और अमेरिकी लोगों के साथ हैं। संसद में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने भी ट्वीट के माध्यम से अपनी चिंता प्रकट की। हाल ही में संपन्न हुए 7 राज्यों की 13 विधानसभा सीटों के चुनावों में केंद्र में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका लगा है। भाजपा इन 13 सीटों में से केवल 2 ही सीटें, एक हिमाचल प्रदेश और दूसरी मध्य प्रदेश में जीत सकी, जबकि इंडिया गठबंधन ने 10 सीटों पर जीत दर्ज की। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने इन नतीजों को मोदी सरकार की जनता विरोधी नीतियों की हार बताया।
7 राज्यों में हुए उपचुनाव के नतीजे बेहद शानदार हैं। इंडिया गठबंधन 13 में से 10 सीटें जीता है, एक पर एक इंडिपेंडेंट की विजय हुई है। भारतीय जनता पार्टी वाले 13 सीट लड़े थे, 11 सीट पर हारे हैं, मात्र 2 जीते हैं। ये देश सिरे से बीजेपी को नकार रहा है। ये देश नरेंद्र मोदी को 1 महीने के अंदर ही एक और बड़ा संदेश दे रहा है और फिर से कह रहा है कि हमें नफरत की, हिंसा की, वैमनस्य की, उलझुल की बातों की राजनीति नहीं चाहिए। हमें अमन चाहिए, हमें शांति चाहिए, हमें चैन चाहिए, हमें मोहब्बत चाहिए, हमें प्रगति चाहिए। ये देश कह रहा है कि नीच पर चर्चा चाहिए। ये देश कह रहा है कि मणिपुर के घाव पर मरहम चाहिए। ये देश कह रहा है बेरोजगारी और महंगाई से निजात चाहिए।
हालांकि इन नतीजों पर अभी तक भाजपा की ओर से कोई भी आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी अपनी सरकार की कथित उपलब्धियां गिनाकर विपक्ष को इसका जवाब देने की कोशिश कर रहे हैं। उनका यह प्रयास कई राज्यों में नज़दीक आ रहे विधानसभा चुनावों पर केंद्रित है। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में 29,000 करोड़ के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष पर झूठे नैरेटिव गढ़ने का आरोप लगाया।
हाल में RBI ने रोजगार पर एक विस्तृत रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट के अनुसार बीते 3-4 सालों में देश में लगभग 8 करोड़ नए रोजगार मिले हैं। इन आंकड़ों ने रोजगार को लेकर झूठे नैरेटिव गढ़ने वालों की बोलती बंद कर दी है। ये झूठे नैरेटिव वाले निवेश के दुश्मन हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण के दुश्मन है, भारत के विकास के दुश्मन है। इनकी हर नीति युवाओं से विश्वासघात और रोजगार को रोकने वाली है।
गत शुक्रवार केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक ट्वीट के माध्यम से भारत सरकार का नोटिफिकेशन पोस्ट करते हुए 25 जून के दिन को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की। विपक्षी इंडिया गठबंधन के कई दलों ने 25 जून बीत जाने के बाद अचानक 12 जुलाई को की गई इस घोषणा पर भाजपा सरकार की जमकर आलोचना की है। कांग्रेस के प्रमुख प्रवक्ता पवन खेड़ा ने इसे भाजपा सरकार द्वारा बौखलाहट में लिया गया निर्णय बताया।
क्यों पिछले महीने की 4 तारीख को एक ऐसा 440 वोल्ट का करंट लगा, झटका लगा, 400 पार का सपना देखने वाले 240 पर सिमट गए और संविधान को बदलने का उनका सपना चूर चूर हो गया, उनका घमंड चूर चूर हो गया, उनका अहंकार चूर चूर हो गया। लेकिन अब जब उनके सपने में संविधान आना शुरू हुआ, जब जय संविधान के नारों से हमारा संसद इस बार गूंज उठा, अब संविधान हत्या दिवस की बात हो रही है। संविधान हत्या दिवस ये शब्द भारत सरकार की गैजेट नोटिफिकेशन, आप समझिए उनकी नियत, आप समझिए उनकी मानसिकता, जो इस तरह का शब्द ला सकते हैं। आप राजनीतिक रूप से इस शब्द का इस्तेमाल करिए, कोई दिक्कत नहीं। भारत सरकार की गैजेट नोटिफिकेशन में संविधान हत्या का शब्द वही लोग ला सकते हैं जो संविधान की हत्या करना चाहते हैं।
शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे के नेता संजय राउत ने 1975 के आपातकाल का समर्थन करते हुए भाजपा को नसीहत दी।
50 साल हो गए इमरजेंसी को, लोग भूल चुके हैं। इमरजेंसी आपातकाल क्यों लगाया गया? इस देश में कुछ लोग अराजकता फैलाना चाहते हैं। रामलीला मैदान से खुला ऐलान हुआ था हमारे जवानों को, आर्मी को, कि सरकार के आदेशों का पालन मत करिए। तो ऐसे में अगर अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री होते तो भी आपातकाल लगाते। ये देश की सुरक्षा का मामला था। अमित शाह को आपातकाल क्या है पता नहीं, उस वक्त वो कितने साल के थे मुझे पता नहीं। जिस बाला साहब ठाकरे के आज वो गुणगान गा रहे हैं ना, वो नकली शिवसेना के साथ, हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे ने उस वक्त इमरजेंसी को खुला समर्थन दिया था।
श्री राउत के इस बयान पर भाजपा प्रवक्ता और राज्यसभा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने जवाबी हमला बोलते हुए इंडिया गठबंधन पर कई सवाल दागे।
आज शिवसेना के एक नेता संजय राउत जी ने यह कहा है कि आपातकाल इसलिए जरूरी था कि एनआरकी हो गई थी। मैं पूछना चाहता हूं इंडी गठबंधन के लोगों से कि जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में हो रहा वह पवित्र जेपी आंदोलन एनआरकी था? लालू प्रसाद यादव जी से पूछना चाहता हूं, अखिलेश यादव जी से पूछना चाहता हूं कि आपके पिताजी मुलायम सिंह यादव जी एनआरकी के हिस्से थे? सत्ता लोलुपता में आज अपने ऊपर आप अराजकता का स्टैंप भी लगाने को तैयार हो गए।
केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी किए गए एक ताजा नोटिफिकेशन के अनुसार केंद्र शासित दिल्ली की तर्ज पर जम्मू और कश्मीर में उपराज्यपाल को कई नए अधिकार दिए गए हैं। केंद्र के इस निर्णय का विपक्ष ने, खासतौर पर क्षेत्रीय दलों ने, पुरजोर विरोध किया है और इसे संविधान कुचलने की एक जिंदा मिसाल बताया है। RJD के राज्यसभा सांसद मनोज झा ने मौजूदा हालात का हवाला देते हुए भाजपा सरकार को आड़े हाथों लिया।
कौन बोल रहे हैं ये बात? इन्होंने संविधान को तहस नहस करके रख दिया। फादर स्टैन स्वामी क्यों गए दुनिया से बता पाएंगे? हमारे हजारों लोग क्यों जेल में है? ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट क्यों जेल में है? इंदिरा जी के सलाहकार इतने मजबूत नहीं थे जितने इनके हैं, नहीं तो इंदिरा जी को भी कहते कि 352 मत लगाओ, 352 जैसे हालात पैदा कर दो, जो आपने करके रख दिया। हाईकोर्ट की क्या टिप्पणी थी हेमंत सोरेन जी के बारे में? पूरे देश में विपक्ष के नेताओं के साथ क्या कर रहे हैं आप? तो खुद संविधान को तार तार कर रहे हैं। मैं हत्या नहीं बोलूंगा क्योंकि इस तरह के शब्द आप ही को सुहाते हैं। गांधी जी 30 जनवरी को उनका असैसिनेशन हुआ, बोलिए गांधी हत्या दिवस, और किसने हत्या की, उसका वैचारिक रुझान क्या था, किन संगठनों से ताल्लुक था, स्वीकारिए ना, आईना सामना रखना चाहिए।
क्षेत्रीय पार्टी PDP की नेता शेख सबा ने भी इस मसले पर केंद्र सरकार पर तीखे सवाल दागे।
जब भी असेंबली इलेक्शंस होंगे तो जो भी चीफ मिनिस्टर होगा उनके पास कोई पावर्स नहीं होंगे। सो व्हाट दे आर ट्राइंग टू डू इज कि मेरे हिसाब से शायद स्टेटहुड देने का कोई इरादा नहीं है, और LG को एम्पावर करने का मतलब है दिल्ली मॉडल पे जम्मू कश्मीर को भी चलाया जाए। बिकॉज जो इम्पोर्टेंट डिसीजंस है, चाहे वो हमारे पब्लिक ऑर्डर्स हो, ट्रांसफर्स हो, पुलिस हो, प्रिजन हो, जो भी इम्पोर्टेंट डिसीजन हो, टैक्सेशन हो, पॉलिसीज हो, उसमें चीफ मिनिस्टर या हमारे कैबिनेट मिनिस्टर एमएलएस का कोई रोल नहीं रहेगा। तो मेरे हिसाब से वो कश्मीरियों को डिसएम्पावर करने का मतलब है और ये बिल्कुल भी सही नहीं है, लोगों के हक में नहीं है।
तो ये थे अब तक के समाचार, नमस्कार।
Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organization a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.